नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। आर्टुरो डेडेस्की की पुस्तक एडी एल्गोरिथम्स एडेड डिजाइन पैरामेट्रिक स्ट्रेटेजीज यूजिंग ग्लास हॉपर कंप्यूटेशनल डिजाइन पर केंद्रित एक विस्तृत व्यावहारिक संदर्भ ग्रंथ है। इसका विषय केवल डिजिटल रूप से आकर्षक आकृतियां बनाना नहीं, बल्कि डिजाइन प्रक्रिया में नियमों, संबंधों और डेटा को सक्रिय रूप से शामिल करना है। पुस्तक में ग्लास हॉपर को राइनोसेरस के साथ काम करने वाले एक दृश्य एल्गोरिदम संपादक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से डिजाइनर जटिल ज्यामिति बना, बदल, जांच और अनुकूलित कर सकते हैं। टेडेस्की एल्गोरिदम्स एडेड डिजाइन शब्द का उपयोग उस कार्य पद्धति के लिए करते हैं जिसमें एल्गोरिदम डिजाइन के निर्माण और निर्णय दोनों में सहायता करते हैं। पैरामेट्रिक मॉडलिंग, फॉर्म फाइंडिंग, डिजिटल फैब्रिकेशन, पर्यावरणीय विश्लेषण और संरचनात्मक अनुकूलन इसके प्रमुख क्षेत्र है। चरणबद्ध ग्रास हॉपर परिभाषाओं, चित्रों और केस स्टडीज के सहारे यह पुस्तक वास्तुकारों, उत्पाद डिजाइनरों और विद्यार्थियों को पारंपरिक कैड मॉडलिंग से नियम आधारित डिजाइन सोच की ओर ले जाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एल्गोरिदम्स एडेड डिजाइन, आकृति बनाने से अधिक डिजाइन संबंधों को नियंत्रित करने की विधि। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि एल्गोरिदम्स एडेड डिजाइन को केवल कंप्यूटर द्वारा डिजाइन करने के समान नहीं समझना चाहिए। पारंपरिक कैड में डिजाइनर अक्सर वस्तु की रेखाओं, सतहों और ठोस रूपों को सीधे संपादित करता है। इसके विपरीत, एल्गोरिदम आधारित प्रक्रिया में डिजाइनर उन नियमों को निर्मित करता है जिनसे रूप उत्पन्न होगा। उदाहरण के लिए, किसी मुखौटे की ज्यामिति को अलग अलग घटकों से हाथ से बदलने के बजाय छिद्रों का आकार, दूरी, दिशा और घनत्व नियंत्रित करने वाले पैरामीटर बनाए जा सकते हैं। किसी एक इनपुट के बदलने पर पूरा मॉडल अपने नियमों के अनुसार पुनर्गठित होता है। यह बदलाव केवल गति का लाभ नहीं देता, इससे डिजाइनर को यह स्पष्ट करना पड़ता है कि किन तत्वों के बीच कौन सा संबंध आवश्यक है, कौन से माप स्थिर है और किन स्थितियों में रूप बदलना चाहिए। पुस्तक इसी कारण जटिलता को अनियंत्रित सजावटी रूप के बजाय व्यवस्थित नियंत्रण की समस्या मानती है। ग्रास हॉपर की नोड आधारित दृश्य भाषा इस सोच को सुलभ बनाती है, क्योंकि डेटा, ज्यामिति और क्रियाओं का प्रवाह एक साथ दिखाई देता है। फिर भी पुस्तक का निहित पाठ यह है कि एल्गोरिदम अपने आप बेहतर डिजाइन नहीं बनाता। सार्थक परिणाम के लिए डिजाइन उद्देश्य, ज्यामितीय तर्क और निर्माण संबंधी सीमाओं की समझ पहले आवश्यक रहती है। दूसरा, ग्लास हॉपर की दृश्य प्रोग्रामिंग मॉडल को स्थिर वस्तु से बदलने योग्य प्रणाली में रूपांतरित करती है। ग्लास हॉपर इस पुस्तक का मुख्य कार्य परिवेश है, लेकिन इसका महत्व किसी एक सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण से आगे है। यह राइनोसरस के भीतर दृश्य घटकों को जोड़कर प्रक्रिया बनाने देता है। एक घटक बिंदु, वक्र या संख्या ले सकता है, दूसरा उस डेटा को बदलता है और अगला परिणाम को ज्यामिति में बदल देता है। इस श्रृंखला को परिभाषा कहा जा सकता है। पुस्तक के चरणबद्ध प्रदर्शन पाठक को इनपुट, गणना और आउटपुट के संबंध को पढ़ना सिखाते हैं। यही कौशल जटिल परिभाषाओं में त्रुटि खोजने और उन्हें संशोधित करने के लिए जरूरी है। पैरामीटर का उपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आकारों की एकल प्रतिकृति के बजाय अनेक संभावित संस्करणों का परीक्षण संभव होता है। डिजाइनर अनुपात, वक्रता, विभाजन संख्या या आकर्षण बिंदुओं जैसी स्थितियों को बदलकर परिणामों की तुलना कर सकता है। इस प्रक्रिया में मॉडल एक अंतिम वस्तु नहीं रहता, बल्कि संभावनाओं की प्रणाली बन जाता है। हालांकि दृश्य प्रोग्रामिंग आरंभ में कोड लिखने की बाधा घटाती है, यह गणितीय और तार्किक अनुशासन की जरूरत समाप्त नहीं करती। डेटा संरचना, क्रम, ज्यामितीय निर्भरता और गणना लागत को समझे बिना परिभाषा भारी या अविश्वसनीय हो सकती है। पुस्तक का मूल्य इसी संतुलन में है, वह ग्रास हॉपर को सहज इंटरफेस और कठोर डिजाइन तर्क दोनों के माध्यम के रूप में रखती है। तीसरा, जटिल मुक्त रूप ज्यामिति के लिए पैरामेट्रिक नियंत्रण और फॉर्म फाइंडिंग का संयोजन। टेडेस्की की चर्चा का एक प्रमुख पक्ष ऐसी जटिल ज्यामिति का विकास है, जिसे सीधे हाथ से मॉडल करना कठिन, धीमा या असंगत हो सकता है। मुक्त रूप सतहें, दोहराव वाले पैटर्न, अनुकूलित घटक और स्थानिक संरचनाएं तभी उपयोगी बनती है जब उनके भीतर के संबंध नियंत्रित किए जा सके। पैरामेट्रिक मॉडलिंग इस नियंत्रण को मापों, सीमाओं और नियमों में रखती है। फॉर्म फाइंडिंग इससे अलग लेकिन संबंधित प्रक्रिया है। इसमें डिजाइनर केवल पहले से निश्चित आकृति को डिजिटल नहीं करता, बल्कि बलों, सीमाओं, सामग्रीगत व्यवहार या अन्य शर्तों के आधार पर संभावित रूप खोजता है। पुस्तक इन विधियों को उस व्यापक विचार से जोड़ती है कि रूप निर्णयों का परिणाम होना चाहिए, केवल मनमाना दृश्य प्रभाव नहीं। इससे डिजाइन में पुनरावृत्ति संभव होती है। एक ही आधारभूत तर्क से कई विकल्प निकाले जा सकते हैं और फिर उनकी उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। वास्तु और उत्पाद स्तर पर यह क्षमता विशेष उपयोगी है। क्योंकि आकार, घटक संख्या, सतह विभाजन और स्थानिक प्रदर्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परंतु पुस्तक के विषय से यह भी स्पष्ट होता है कि बहुत अधिक पैरामीटर हमेशा अधिक स्वतंत्रता नहीं देते। यदि संबंध अस्पष्ट हो तो विकल्पों की संख्या निर्णय को आसान करने के बजाय भ्रमित कर सकती है। इसलिए प्रभावी फॉर्म फाइंडिंग के लिए सीमित, उद्देश्यपूर्ण इनपुट और स्पष्ट मूल्यांकन मानदंड जरूरी है। चौथा, पर्यावरणीय विश्लेषण और संरचनात्मक अनुकूलन को प्रारंभिक डिजाइन निर्णयों में शामिल करना। पुस्तक एल्गोरिदम आधारित डिजाइन को केवल ज्यामितीय प्रयोग तक सीमित नहीं रखती, बल्कि पर्यावरणीय विश्लेषण और संरचनात्मक अनुकूलन को भी उसके उपयोग क्षेत्र के रूप में रखती है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि डिजाइनर रूप विकसित करते समय सूर्य, छाया, अभिविन्यास या अन्य प्रदर्शन संबंधी सूचनाओं को अलग अंतिम जांच के बजाय प्रक्रिया के इनपुट के रूप में देख सकता है। इसी तरह संरचनात्मक अनुकूलन का उद्देश्य केवल सामग्री घटाना नहीं है, यह भार, दक्षता और रूप के बीच संबंध को समझने की दिशा देता है। जब प्रदर्शन संबंधी डेटा और ज्यामिति एक ही पैरामेट्रिक प्रणाली में जुड़े हों तो किसी बदलाव का प्रभाव अपेक्षाकृत जल्दी देखा जा सकता है। इससे वास्तुकार और डिजाइनर अनुमान पर निर्भर रहने के बजाय तुलनीय विकल्पों के साथ काम कर सकते हैं। फिर भी पुस्तक का यह क्षेत्र सावधानी की मांग करता है। डिजिटल विश्लेषण की विश्वसनीयता उसके इनपुट, मान्यताओं और उपयोग की गई गणना विधि पर निर्भर करती है। प्रारंभिक मॉडल उपयोगी संकेत देते हैं, पर वे विस्तृत इंजीनियरिंग सत्यापन का विकल्प नहीं है। इस कारण पुस्तक का वास्तविक योगदान डिजाइनर को प्रदर्शन केंद्रित प्रश्न पूछने की क्षमता देना है। कौन सा रूप कम संसाधन लेगा, कौन सा विन्यास बेहतर प्रतिक्रिया देगा और किन सीमाओं के भीतर बदलाव स्वीकार्य है। ऐसे प्रश्न डिजाइन को सजावटी जटिलता से कार्यक्षम जटिलता की ओर मोड़ते हैं। अंत में डिजिटल फैब्रिकेशन एल्गोरिदम से निर्माण योग्य घटक और उत्पादन तर्क तक की कड़ी AED का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक आयाम डिजिटल फैब्रिकेशन है। जटिल डिजिटल मॉडल का मूल्य सीमित रह जाता है यदि उसे वास्तविक सामग्री, मशीन प्रक्रिया और असेंबली की सीमाओं से नहीं जोड़ा जाए। पुस्तक इस संबंध को एल्गोरिदम आधारित डिजाइन की व्यापक क्षमता के रूप में प्रस्तुत करती है। पैरामीट्रिक प्रणाली घटकों की संख्या, आकार, पहचान और विविधता को व्यवस्थित करने में मदद कर सकती है। इससे ऐसे रूपों पर काम संभव होता है जिनमें अनेक अलग हिस्से हो, लेकिन उनके पीछे उत्पादन के लिए स्पष्ट नियम मौजूद हो। डिजाइनर सतह को पैनलों में बांटने, दोहराव और भिन्नता के अनुपात को नियंत्रित करने या निर्माण योग्य आयामों के अनुसार मॉडल संशोधित करने जैसे कार्य कर सकता है। यह वास्तुकला, फर्नीचर, स्थापना और उत्पाद डिजाइन सभी में उपयोगी दृष्टि है। यहां मुख्य सिद्धांत यह है कि फैब्रिकेशन को अंतिम चरण में जोड़ा गया तकनीकी काम नहीं मानना चाहिए। यदि सामग्री की मोटाई, मशीन की क्षमता, जोड़ने की विधि और सहनशीलता आरंभ से मॉडल के तर्क में हो तो डिजाइन अधिक यथार्थवादी बनता है। इसके विपरीत केवल स्क्रीन पर प्रभावशाली दिखने वाली ज्यामिति अक्सर उत्पादन में महंगी, कमजोर या असंभव सिद्ध हो सकती है। पुस्तक की प्रासंगिकता इसी कारण बनी रहती है क्योंकि वह डिजिटल स्वतंत्रता को निर्माण की जवाबदेही के साथ जोड़ती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन वास्तुकारों, इंटीरियर और उत्पाद डिजाइनरों, डिजिटल फैब्रिकेशन अभ्यासियों तथा उन्नत विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी है जो राइनोसेरस का आधारभूत परिचय रखते हैं और ग्लास हॉपर के माध्यम से अपनी डिजाइन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। यह केवल कमांडों की सूची नहीं देती, बल्कि यह समझ विकसित करती है कि नियम, पैरामीटर, डेटा और ज्यामिति को एक साथ रखकर डिजाइन समस्या को कैसे पुनर्परिभाषित किया जाए, पाठक जटिल रूपों को नियंत्रित करने, अनेक विकल्पों की तुलना करने और पर्यावरणीय, संरचनात्मक तथा उत्पादन संबंधी विचारों को शुरुआती चरण में लाने का व्यावहारिक ढांचा प्राप्त कर सकता है। गणित और डिजिटल मॉडलिंग में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए इसकी दृश्य और चरणबद्ध प्रस्तुति विशेष सहायक हो सकती है। हालांकि गंभीर उपयोग के लिए स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक रहेगा। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका भेद, इसका व्यापक दायरा है। यह ग्रास हॉपर को केवल आकर्षक पैटर्न बनाने के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि अवधारणा, विश्लेषण, अनुकूलन और निर्माण के बीच सेतु के रूप में देखती है। साथ ही केस स्टडीज और पेशेवर योगदान इसे सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल से अधिक संदर्भपूर्ण बनाते हैं। पुस्तक का स्थायी पाठ यह है कि कंप्यूटेशनल डिजाइन में दक्षता का अर्थ अधिक जटिल आकृति बनाना नहीं, बल्कि जटिल निर्णयों को स्पष्ट, परिवर्तनीय और जांच योग्य प्रणाली में बदलना है। इसलिए यह उन पाठकों के लिए मूल्यवान है जो डिजिटल डिजाइन को औपचारिक प्रयोग और वास्तविक परियोजना सीमाओं दोनों से जोड़ना चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं आर्टुरो टेदेश की, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।